ओम शांति। बोलिए शिव जयंती की आगे। ये दिव्य अवतरण जिसको शिव जयंती व शिवरात्रि कहते हैं, कितना आत्माओं के लिए स्नेह भरा सुख भरा अवतरण है। सतयुग में भी ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे। आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाएगी, लेकिन इस समय आत्माएं परमात्मा का बर्थडे मनाती है। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे, जो एक ही समय पर बाप का भी है और बच्चों का भी हो, ऐसा कभी होता है क्या? अगर तारीख एक भी होगी तो वर्ष का या मास का या डेट का अंतर होगा, लेकिन यह अवतरण दिवस कितना वंडरफुल है, जो बाप और बच्चों का साथ साथ है। तो बाबा कह रहे हैं ये आत्माओं के लिए स्नेह भरा और सुख भरा अवतरण है। सतयुग में भी ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे। आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाएगी, लेकिन इस समय आत्माएं परमात्मा का बर्थडे मनाती है, वह जो अजन्मा है। अभोक्ता अकर्ता, वो अकर्ता है या नहीं है पहले तो ये प्रश्न है, है कि नहीं है? गीता में लिखा है जन्म कर्म च दिव्य च, हे अर्जुन मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। एक तरफ ये कर्म दिव्य, दूसरा लिखा है मैं अकर्ता हूँ, संसार में सब कुछ करते हुए भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसके साथ कोई हिसाब किताब नहीं है, वो जो कुछ कर्म करता है वो ऐसे ही जैसे कुछ कर ही नहीं रहा है, वो कर रहा है पर नहीं कर रहा है। उसके कर्म इतने डिटैच्ड है, उसके कर्म इतने न्यारे हैं, वो अपने ही कर्मों से इतना न्यारा है कि वो कर भी रहा है परंतु कुछ कर भी नहीं रहा है। इसके लिए अकर्ता संज्ञा उसके नाम के साथ जोड़ी गई है। परमात्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, खा तो रहा है पर नहीं खा रहा है, बोलता भी नहीं। तो अकर्ता अभोक्ता अनासक्त है। मया तद्विदं सर्वं जगत व्यक्तिमूर्तिनां मस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। मैं सब में हूँ पर मुझ में कोई नहीं है, मैं किसी में नहीं हूँ। इस तरह के बहुत सारे वाक्य गीता में आते हैं जो कहते हैं कि वो कर रहा है पर कुछ नहीं कर रहा है, वो है पर वो नहीं है। इस तरह से बहुत सारे उसमें विरोधाभासी वाक्य भी है। तो भगवान अकर्ता ही है, सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहा है। तो जो अजन्मा है उसके जन्मदिन मनाने की बात यहाँ चालू है। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे, जो एक ही समय पर बाप का भी हो और बच्चों का भी हो, ऐसा कभी होता है क्या? अगर तारीख एक भी होगी तो वर्ष का या मास का या डेट का अंतर होगा, लेकिन यह अवतरण दिवस कितना वंडरफुल है, जो बाप और बच्चों का साथ साथ है। इसे भक्ति में महाशिवरात्रि कहा जाता है या कालरात्रि भी कहते हैं। क्यों मनाते हैं संसार में महाशिवरात्रि? संसार वाले क्यों मनाते हैं? वो भी यही मानते हैं कि शिव का अवतरण हुआ था उस समय, रात में शिव का विवाह दिखाते हैं, शिव की बारात निकली थी रात में, ऐसी बहुत सारी कहानी। और चंद्रमा जो कि शापित था दक्ष प्रजापति के शाप के कारण क्षय हो रहा था, उसी रात को शिव ने आकर उसको शाप से मुक्ति दी और उसे अपने भाल शेर पर धारण किया। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं शिवरात्रि की भी। तो कालरात्रि उसका आना और अंधकार का समाप्त होना, इसका यादगार शिवरात्रि है जो कि अब वो आया है। तो इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी दो विशेषताओं से ये दिवस मनाते हैं। कैसे मनाते हैं शिवरात्रि? सुधा माता क्या करते हैं शिवरात्रि को? हाँ
चार करोड़ में हम लोग करते थे, चार करोड़ में चार भोग डालते
भोग और
पानी जल भी नहीं लेते हैं।
हाँ अन्न से दूर रहते हैं, उपवास करते हैं, एक तो उपवास, दूसरा जागरण करते हैं, तीसरा और भी कुछ करते हैं, जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक, उसे जल का अभिषेक करते हैं और दूध से भी अभिषेक करते हैं, बिल्व पत्र डालते हैं उसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर। हाँ नशा नशा चढ़ाते हैं, प्रसाद समझते हैं। तो बाबा कहते हैं इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी दो विशेषताओं से दिवस मनाते हैं। दो विशेषताएं कौन सी है? एक विशेष व्रत धारण करते हैं और दूसरा स्वयं को समर्पित ना करते हुए और किसी को बलि चढ़ाते हैं। तो बलि चढ़ाना और व्रत धारण करना, ये दो विशेषताएं इस जीवन की दिवस की है। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं, अभी कौन कौन से व्रत, चाहे कोई भोजन का करते, भोजन ना करने का व्रत, कोई जागरण का करते, सारी रात जागना, फिर सुबह सुबह उठकर नहा धोकर वो हवन करना, अखंड ज्योत, कोई दूर दूर से पैदल करते हुए चलने का करते, कितना भी थक जाए लेकिन व्रत अपना पूरा करते, पैदल यात्रा करते, सब ऑनलाइन, पूजा भी ऑनलाइन होती है आजकल, तो बटन दबाओ तो वो अगरबत्ती जलती है, बटन दबाओ दूसरा तो दिया आरती चालू हो जाती है, सब कुछ। तो आजकल तो पूरा है ऑनलाइन, सब कुछ हो जाता है पूजा ना, सहज पुरुषार्थ। तो कहाँ कहाँ पैदल जाते हैं यहाँ बाबा, पैदल जाने की, दूर दूर पैदल जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, पशुपतिनाथ में बहुत बड़ी पूजा होती है शिवरात्रि के दिन, और कहाँ जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग,
जहाँ शिव मंदिर वहीं जाते
हैं, जहाँ जहाँ शिव का मंदिर है वहाँ वहाँ जाएंगे। हाँ सोमवार को, कितना भी थक जाते लेकिन अपना व्रत पूरा करते। शरीर को कष्ट देंगे, जितना ज्यादा कष्ट देंगे उतनी अधिक अधिक बड़ा भक्त हो, जितना ज्यादा दिखावा उतना मान प्राप्त होता है भक्ति में, चाहे कितने दिन भी लग जाए, लेकिन कितना समय भी लग जाए लेकिन व्रत नहीं छोड़ते। ऐसे ऐसे व्रत लेते हैं कि चाहे कितना भी दिन और कितना भी समय। तो यह यादगार किससे कॉपी की है? आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का है एक दिन का व्रत, हमारा है आजीवन व्रत, हर दिन व्रत लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार व्रत ले लिया और काम पूरा हुआ, हर दिन अमृत वेले व्रत लेने धारण करना पड़ता है। वहाँ एक बार व्रत एक ही दिन का है, हमारा हर दिन का है, तो रोज चढ़ाना पड़ता है, एक दिन चढ़ा दिया और काम पूरा, ऐसा नहीं है। आपने भी जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य बर्थ लिया तो क्या व्रत लिया? सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया, लिया ना कि थोड़ा थोड़ा नींद करने करेंगे, यह व्रत लिया। वो लोग जागरण करते रात भर और हम सारा जीवन किससे, अज्ञान नींद से, विस्मृति की नींद से, अज्ञान की नींद से, वह थोड़े थोड़े झुटके खा लेंगे, ऐसे तो नहीं किया बाबा, डबल विदेशियों से बात कर रहे, उन्हें शिवरात्रि की गुह्यतम बातें सिखा रहे, डबल विदेशियों को, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, ये सब लोगों को, तो आप सभी ने भी शिव जयंती व दिव्य बर्थडे पर जागरण का व्रत लिया, इसलिए भक्त भी यादगार रूप में जागरण करते हैं। तो हमारा व्रत कौन सा है? सदा जागती ज्योत, सदा आँख खुली रहे संपूर्णता की, आँख बंद ना हो, आँख में धूल ना जाए, आँख मलते ना रहे, सदा आँख खुली रहे, क्योंकि नजरों से निहाल करना है, भक्त सामने है, तड़प रहे एक दृष्टि के लिए। तो हमारा कर्तव्य यहाँ बढ़ गया, इतनी बड़ी जिम्मेवारी, इतनी बड़ी, हम नूर है, ज्योत है, कांति है, संसार की शोभा है। तो भक्त भी यादगार रूप में जागरण करते हैं। और आप सबने भी फिर दूसरा, एक तो पहला व्रत कौन सा है? सदा जागृत अवस्था, सोना नहीं है, बस सोना अर्थात विस्मृत हो जाना, सोना अर्थात भूलना, सोना अर्थात बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना, झुटका खाना, संकल्पों के गुटके, ज्ञान मुक्त रहना, ज्ञान मुक्त अवस्था को में भोग युक्त अवस्था में स्थित हो जाना। तो कैसे जाग कर रहे हैं? जागरण अर्थात आत्माभिमानी स्थिति, मूर्छा अर्थात देह अभिमानी स्थिति। जो आत्माभिमानी है वही क्या कल की मुरली में बाप का प्यार केवल उन्हीं को मिलता है, जो देह अभिमानी स्थिति में उनको बाप का प्यार नहीं मिलता, जो आत्माभिमानी स्थिति में केवल बाप का प्यार उन्हें मिलता है। थर्ड लाइन में, बरोबर, हेड लाइन में, अच्छा। हाँ, तो ये आत्माभिमानी अवस्था जागरण की अवस्था है, निरंतर हम जागे रहे, चाहे कितनी भी नींद आती है अपने आप को ऐसे 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 खुद ही जगाना पड़ेगा, सोए ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा। दूसरा जगाने वाला नहीं है, स्वयं ही स्वयं को इंजेक्शन लगाते रहना बीच बीच में, एक एक घंटे में अशरीरी का इंजेक्शन, सुबह सारे इंजेक्शन लोड करके रख देना, 12 इंजेक्शन एक एक घंटे में लगाने के लिए, 12 घंटे या थोड़े ज्यादा भी। तो सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया ना, कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे, ये व्रत लिया, वह थोड़े झुटके खा लेंगे, ऐसे तो नहीं है। तो आप सभी ने भी शिव जयंती व दिव्य बर्थडे पर जागरण का व्रत लिया, इसलिए भक्त भी यादगार रूप में जागरण करते हैं। तो जागृत कैसे रहे? कभी जागरण रहना है, सुबह तो है जागृत, मुरली में भी है, शाम को भी है। नींद कब आती है? दिन में आती है नींद, 9 बजे निद्रा चालू होती है तो सीधा 6 बजे टूटती है, फिर 6 बजे बेदार कहते हैं उसे, बेदार होना, जागना। सुबह 9 बजे सोते हैं तो 6 बजे नींद टूटती है। तो सुशील भाई कल हमको बताना आप 9 से 6 बजे तक जागना कैसे, ये होमवर्क, 9 से 6 बजे तक, उसके पहले नहीं, उसके बाद में नहीं, 9 से 5 ले लो या 6 ले लो, 9 से 6 बजे तक स्वयं को जगा कर कैसे रखना है जागरण। हाँ, दिन में ही जागरण अर्थात आत्माभिमान, जागरण अर्थात संपूर्ण ज्ञान, नॉलेजफुल अवस्था, जागरण ये है जागरण की अवस्था, जागरण अर्थात आत्मिक दृष्टि, जागरण अर्थात परमात्मा याद, जागरण अर्थात परमात्मा प्रेम में लवलीन, जागरण अर्थात ज्ञान का चिंतन, जागरण अर्थात त्रिकालदर्शी स्थिति। नहीं, ये तो वो क्या है, पर कैसे करना, क्या करे कि जिससे नींद ना आ जाए दिन में, तो नींद आने के कारण क्या क्या है, और ये जागरण अवस्था कैसे रखनी है, सोने नहीं देना है स्वयं को, चाहे कितना भी नशा है। क्या क्या किया गया, किस लिए? जागरण के लिए। वही क्या क्या करना है जागरण, जिसके हम सोए ना, मूर्छित ना हो, अनकॉन्शियस, बदहवास, बेहोश ना हो। जागती ज्योत हमारा यादगार है, वो कैसे रहे, क्या करे, किधर किधर चिमटी काटे, क्या क्या करना चाहिए, तेल डाले आंखों में, तेल डाले कि डंडा रखे या कहीं कुछ बांध के रखे, क्या करे कि जिससे नींद ही ना आए, कि गोली खाए कोई, ऐसी कोई गोली डॉक्टरों के पास होगी तो वो भी ट्राई कर सकते हैं कि जिससे नींद ना आए खाए। तो डॉक्टरों के पास यूजवली नींद आने की दवाई होती है, नींद कम करने की दवाई है ही नहीं, बहुत ही मुश्किल है, नहीं है कोई। जिससे नींद उड़ जाए वो फिर साइड इफेक्ट है कुछ दवाइयों के, जिससे नींद कम हो जाती है, पर वो देने की वो कैसे दे सकते हैं, मेन एक्शन वो नहीं है कि जिससे नींद कम हो जाए। तो ऐसी वो कौन सी दवाई है संजीवनी बूटी कि जिससे नींद ही उड़ जाए, वो जागरण की अवस्था आ जाए, वो ऐसी अवस्था आ जाए कि जैसे कोई संकट आता है और भक्त कैसे भगवान के सामने रोज तो जाता है पर जब संकट आता है तो कैसा जागृत अवस्था में जाता है कि हे प्रभु बस तू ही है, अब तेरे सिवा तो कुछ है ही नहीं, अब बस तेरे लिए ही जीवन है, ये संपूर्ण जागरण अवस्था में रहता है, बस तू ही है एक आधार, एक सहारा, तेरी पनाह में, बस अब तू देख ले क्या करना है, सारी भक्ति दाव पे लगा दी है अब तक की। तो जागरण कैसे करे, अभी दूसरा व्रत है, आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया है, भगवान की बातें इतनी गुही है, भक्ति में शास्त्र को पढ़ने के लिए एक शब्द था पाठ करना, एक है पढ़ना, पढ़ना अलग, पाठ करना अलग, पढ़ना अर्थात एक बार किताब, किताबों को पढ़ा जाता है, शास्त्रों को पढ़ा नहीं जाता है, पाठ किया जाता है शास्त्रों का, ज्ञानेश्वरी का पाठ किया जाता है, हरि पाठ जो शास्त्र होते हैं, रामायण का पाठ किया जाता है, जो शास्त्र होते हैं उनका पाठ किया जाता था। एक होता है पढ़ना, पढ़ना अर्थात किताब पढ़ ली अच्छी है खतास, वही वही आ रहा हूँ, एक है पढ़ना, पढ़ना अर्थात किताब पढ़ ली, कोई फिल्म अच्छी है देख ली एक बार खत्म, बार बार कौन देखेगा, एक बार देख लिया काम खत्म, एक बार किताब पढ़ ली काम खत्म। नया स्थान है, हम लोगों को बुलाते माउंट आबू देखने, हम आके देख के गए, सब देख लिया ब्रह्मा कुमारी का, अब क्या देखना है, एक बार देख लिया अभी वापस वापस थोड़ी आना है, ऐसे कहते। तो ये है पढ़ना देखना, पाठ अर्थात बार बार पढ़ना, रोज पढ़ना, रोज उसके नए अर्थ ढूंढना, रोज छलांग लगाना उस सागर में और कुछ लेके आना, ये मुरली है, मुरली का पाठ करना है। सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है, ब्राह्मणों का शास्त्र कौन सा है, मुरली, मुरली ही शास्त्र है, तो इस शास्त्र का पाठ करना है। जब ज्ञान में आए थे नए नए तब जो मुरली पढ़ी, तब जितनी ग्रहण की और समझा, उसके कुछ समय के बाद एक साल के बाद वही व्यक्ति वो मुरली पढ़ता है तो कुछ दूसरे अर्थ ढूंढता है उसमें, फिर वही व्यक्ति जब 5 साल के बाद थोड़ा पुरुषार्थ करता है और योग का अनुभव करता है और वही मुरली पढ़ता है जो पहले दिन पढ़ी थी और 1 साल के बाद पढ़ी थी, अभी वो मुरली उसके लिए कुछ नए अर्थ बताती है, फिर वही व्यक्ति जब मधुबन आता है और मधुबन में तपस्या करता है तो उसके कुछ और अर्थ है, और लंबा समय गुजरता है, तपस्या में बीतता है, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव के साथ बाहर निकलता है, तब जब वो मुरली पढ़ता है तो उसके लिए उस मुरली के कुछ और अर्थ है, वो और गहराई में जाता है, जितना गहराई में जाओगे कुछ और लेके आओगे, फिर एक ऐसी अवस्था को पहुंचता है कि बुद्धि की क्षमता इतनी बढ़ गई है, फिर बुद्धि की ग्रहण शक्ति बढ़ गई है, मनन शक्ति एक उच्चतम स्तर पर गई है, वहां वो पढ़ रहा है, वो पढ़ना और वो पढ़ना बहुत अंतर है। जैसे कोई मेडिकल स्टूडेंट पहले दिन मेडिकल कॉलेज में जाता है, वो किताब दी जाती है उसको, ये है भाई, वो तब पढ़ता है, फिर जब पढ़ाई तो करता नहीं है खाली पढ़ता है, तब उसकी तब की अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर वो जब पढ़ाई देता है तब पढ़ना चालू करता है, एग्जाम आती है तब, 6 महीने पहले तो पढ़ाई चालू करता है एग्जाम के, तब तक तो कुछ और काम करते रहते हैं, फिर जब पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा समझ में आता है, फिर सेकेंड ईयर में जब जाता है तो और थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, फिर और, तब तक तो पेशेंट देखे ही नहीं है, मेडिकल की पढ़ाई पूरी हुई पर पेशेंट नहीं देखा है, पेशेंट जब देखता है तब कुछ और समझ में आता है, फिर धीरे 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 समझ बढ़ती है। तो पहला दिन 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, जैसा उधर है वैसा इधर भी है। इधर तो और अर्थ समझ में आते, इधर तो जीवन के अनुभव उसमें जुड़े जाते। तो पहले दिन जो समझा, अब जो समझा, बाद में जो समझा, और अभी जो समझ रहे, अभी तक भी पढ़ रहे थे, पर और मनन करके, चिंतन करके, योग में उसका प्रयोग करके, जीवन में प्रयोग करके जब पढ़ते तो अर्थ बदल जाते हैं उसके। तो इतनी गहराई है। इसके लिए मुरली हमारा शास्त्र है, तो उसका केवल पढ़ना नहीं है, पाठ करना है। कल की मुरली में बाबा ने चार स्टेजेस बताई थी, क्या क्या करना है तुमको। सबसे पहले पढ़ना है, नहीं सबसे पहले तो विचार सागर मंथन करो, थर्ड पेज मुरली। सेकंड लिखो, थर्ड उसको पढ़ो, और चौथा एडिशन करो। एक ही लाइन में चार वाक्य बोल दिए बाबा ने गुप्त रीति से। विचार जैसे ब्रह्मा का भी उदाहरण दिया, ये लिखता था और आपको देता था, कल बोला ना। तो सबसे पहली स्टेज क्या है, विचार सागर मंथन किया, फिर लिखा, फिर उसको पढ़ा, और फिर उसमें एडिशन करो। तो ये आगे की स्टेजेस है, ये केवल पढ़ने वाली बात नहीं है, ये धारण करने की बात है। तो यहाँ बाबा भी आ रहे हैं शुद्ध भोजन का व्रत। इसलिए भक्त लोग भी कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो, तो अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं खाना है मतलब नहीं खाना, उसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड रह सकता है वो, संयम है ना वो। तो आप सब भी कोई भी मन के आगे, तन के आगे परिस्थिति आ जाए तो व्रत तोड़ते हो क्या? कुछ भी हो जाए नहीं तोड़ेंगे व्रत। एक यहाँ पर जैन साध्वी है, यहीं पर रहते हैं, इंचार्ज है, रोज प्रवचन करते हैं, बीच बीच में लंबा लंबा व्रत। एक बार हार्ट अटैक के साथ में एडमिट हुए, तो सारा उनका इलाज कराया, फिर उनको कहा कि आपको एंजियोग्राफी करनी है। तो उन्होंने कराया नहीं, बार बार आते थे पर जब भी बात करते थे एंजियोग्राफी करानी है, अंदर कुछ ब्लॉकेजेस हो सकता है, हमेशा टालते गए टालते गए। हमको समझ नहीं, अभी 2 साल हो गए अभी तक नहीं कराया है। तो अभी उनका भाई आया था, तो वो हमने भी उनको पूछा, वो तो गृहस्थी है, उनकी वो बहन है, तो हमने पूछा ये क्यों नहीं कराते। वो कहे कि अगर ये ट्रैवल करते हैं कोई भी वाहन से तो 108 दिन तक उपवास करना पड़ेगा। अभी उनकी उम्र है 75, डॉक्टर अशोक मेहता के गुरु है वो, लौकिक जीवन के इधर ही रहते हैं डॉक्टर। तो इस कारण से, क्योंकि कोई भी ट्रेवल, अभी एंजियोग्राफी नियरेस्ट है पालनपुर, तो उनको जाना पड़ेगा तो पैदल ही जाना पड़ेगा, वहां पर पैदल वो जा नहीं सकते। हमने फ्लाइट का भी ऑप्शन दिया था, परंतु वो कहते कि नहीं, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार के वाहन से अगर जाना है तो 108 दिन का उपवास। और वो उनकी एज ऐसी है कि अभी वो उपवास नहीं हो सकता, इसके लिए इस कारण से उन्होंने कभी बताया नहीं हमको। हम कहते रहे करो करो करो, तो वो कहते ठीक है ठीक है ठीक है, पर अभी असली कारण पता चला कि कोई भी ट्रैवल अगर करेंगे, चाहे वो उससे भी बिठा के लेके जाएंगे, उनका रहती है ना पालकी, पालकी में भी नहीं, वो इतनी, वो जो पालकी वाले वो भी थोड़ी लोअर लेवल के साधु है।
अच्छा,
वो पालकी भी अलाउड नहीं है, ये तो कंसेशन है थोड़ा वो जो थोड़े बीमार है, परंतु ये एकदम पक्के में से है, इतनी पक्की कि बस अगर मतलब वो ये करना पड़ेगा, ऐसा है उनका। नहीं उनके नियम ही है ऐसे, अभी इसको क्या कहे, जो कहना है कहो। ओपीडी में आते हैं तो वो अगर कोई पुरुष बैठा है तो वहां नहीं बैठेंगे, वो टाइम मतलब कम से कम 45 मिनट्स बीतना चाहिए, उसके बाद बैठते हैं वो यूजुअली। वो जगह जो है पुरुष अगर बैठा है तो वो नहीं बैठेंगे वहां पर। तो ये तो ऐसे व्रत है, देखो कितने पक्के है अपने व्रत के, तोड़ते नहीं है। और बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, कभी कुछ मिक्स खा लेते हो, ऐसे करते हो क्या? कोई देखता तो है नहीं, चलो खा लिया। विदेशियों से बाबा बात कर रहे हैं, खाने की बात है। अपना नियम पक्का रखते हो कि कच्चे हो? भक्त इतने पक्के हैं नियम के, माताओं को देखो, तीन तीन दिन उपवास, चार चार दिन उपवास, डायबिटिक पेशेंट है पर उपवास रखेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, भर्ती होना पड़े आईसीयू में, पर उपवास नहीं तोड़ेंगे। बस
2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं,
तो वो इतने पक्के हैं, तो हमारी हमारी जो व्रत और धारणाएं और मर्यादाएं और नियम है, हम इतने ढीले क्यों उसमें?
हमें
वो कभी सोचते हैं, वो सिख लोग सोचते हैं ये पगड़ी लगाते तो लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं सोचते वो, सोचते हैं कि उनको लगता है वो मुसलमान कोई सोचता है लोग क्या कहेंगे मैं अगर वो टोपी पहनूं और दाढ़ी बढ़ाऊं, नहीं जो पक्का मुसलमान होगा वो कभी नहीं सोचेगा दुनिया चाहे जो कहे करने तो, वो तो ये सोचते हैं कि ये अज्ञान में ये कुफ्र में है ये काफिर है, वो अपनी धारणा में इतने पक्के हैं उनको शर्म नहीं आती है कोई भी चीज की। बेहयात। तो कभी कभी करके थोड़ी दिल होती है, यहाँ तो खान पान की बातें चल रही है बाबा, एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरे भी खाने की दिल होती है, एक ही खाना वही सोमवार को पोहा, चलो आज दूसरा खाए कुछ वही फिर उपमा, तो बाबा कह रहे एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरा भी खाने की दिल होती है, ऐसा भी होता है। एक विदेशी ने अनुभव सुनाया था, एक बार मार्केट गया, फर्स्ट टाइम बाबा से मिलने आया था, तो मधुबन में रुका, मार्केट गया तो जिलेबी देखी, इतना खाने की इच्छा हुई, बोला कैसे रोकू अपने आप को, बड़ा मुश्किल से रोका और आया, उस दिन गुरुवार था, भोग में जिलेबी। बाबा ने वरदान दे दिया था तस्तु। रोका, देखो सब्र का फल मिल गया उसको। बोला अभी बस पैसे निकाल खाने देने ही वाला था और लेने ही वाला था, कौन देखता है मार्केट में। पर पता नहीं क्या हो गया टाइम पर कि स्वयं को रोका, तो फिर अच्छी दवा के दो तीन खा ली। तो अच्छा, इसमें अमेरिका ऑस्ट्रेलिया यूरोप एशिया और रशिया सभी पक्के हो ना या थोड़ा थोड़े कच्चे हो। तो क्या सुना यहाँ पर, यहाँ बातें चल रही है व्रत की, व्रत लेने के लिए संकल्प किया जाता है, संकल्प करना, संकल्प ऐसे जल के साथ लिया जाता है, जल लेते हैं दृढ़ता का प्रतीक है, आज से मैं, जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा की ना, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, अविवाहित रहूंगा, ऐसी कठोर भीष्म प्रतिज्ञा की, देवव्रत नाम था तो भीष्म नाम पड़ गया उसका, नाम बदल गया, और फिर ऊपर से फूलों की वर्षा और आंधी और तूफान, ऐसा होना चाहिए हमारी प्रतिज्ञा। बाबा के कमरे में माता जी जब प्रतिज्ञा ले तो पूरा हिलना चालू हो जाए, बिजली बारिश तूफान ऐसा पूरा आवाज आने लगे, बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा बजे तो समझना प्रतिज्ञा दृढ़ हुई, और हाथ ऊपर करके थोड़ा आंधी और तूफान और ये पत्ते उधर उधर हिलने लगे तो समझना चाहिए। ये ऑलरेडी ये मौसम में करो तो ऑलरेडी है बैकग्राउंड। तो ऐसा ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा व्रत लेना है जो कभी ना टूटे चाहे कुछ भी हो जाए, पवित्रता का व्रत के लिए ये गायन, ब्रह्मचर्य का व्रत, पवित्रता का व्रत, तो ये व्रत लेना है, ठीक है ना। तो पहला व्रत है ये, दूसरा भोजन का यार। तो फिर हम दूसरी बात कर रहे थे जागरण, सदा जागृत अवस्था कैसे रहे, उसके बारे में सुशील भाई कल बताएंगे हमको, कैसे जागे, कौन सा वो इंजेक्शन है जो आज तक चिकित्सा शास्त्र ने भी नहीं ढूंढ के निकाला, वो आपको ढूंढ के निकालना है, अभी भी खोज जारी है उधर पर मिला नहीं है, तो वो कौन सा वो इंजेक्शन है जो एक एक घंटे में लगाया जाए और जिससे व्यक्ति सोए ना, मूर्छित ना हो, अनकॉन्शियस ना हो।
मम्मा बाबा बोलते थे बुढ़ा बाबा को नींद नहीं आती।
क्या करे जिससे नींद फिट जाए।
ओम शांति। टॉपिक दिया गया था कि ब्राह्मण संसार से बाबा के जाने के बाद क्या क्या होगा, तो क्या क्या होगा ब्राह्मण संसार से, हमारे जीवन से या ब्राह्मण संसार से या संसार से, बाप साथ नहीं है तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि जो बाबा का महत्व है, जिसको अभी तक हम ठीक से समझे नहीं कि बाबा वो कौन है, उसकी क्या महानता है, क्या उसका व्यक्तित्व है, कितना हाईएस्ट है। वो उसके जाने के बाद वो हमें अवश्य ही उसका अनुभव होगा कि भगवान जिसके लिए दुनिया में लोगों ने उसको पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, और वो भगवान हमें मिला, बाप के रूप में मिला, उसने हमें अपनाया, अपना बनाया। तो उसके जाने के बाद उसका एहसास होगा। वैसे भी दुनिया में आप देखेंगे कि व्यक्ति को किसी भी चीज का एहसास तब होता है जब उसके हाथ से कोई भी अपना समय है या व्यक्ति है या वस्तु कोई भी उसके हाथ से निकल जाता है। तो जब बाबा इस ब्राह्मण जीवन से या संसार से जाएंगे उसके बाद हमें उसकी वास्तविकता का एहसास अवश्य होगा। जो हम वर्तमान समय कर तो रहे हैं लेकिन कितना नहीं कर रहे हैं। उस समय हमें ये महसूस होगा कि भगवान जो संसार में आया था वो कौन था, जिसको हम सिंपल रूप में कहते हैं कि बाबा बाबा, लेकिन बाबा वो भगवान था। इस ज्ञान में आने के समय भी मुझे ये बाबा शब्द जो ना पसंद नहीं था, क्योंकि बाबा मान दुनिया में जो महात्मा होते हैं, साधु होते हैं, और भगवान तो कितना हाईएस्ट है, कितना श्रेष्ठ है, महान है, उसको बाबा कहना माना उसकी वैल्यू कम करना। तो लंबे समय तक हमने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि भगवान को बाबा कहना, भगवान बाप है, पिता है, वो ठीक है। लेकिन बाद में जब वर्षे की बात आई ना कि बाप से वर्षा मिलता है, तब से स्वीकार किया। तो माना दुनिया में बाबा शब्द जो हम यूज करते हैं वो बहुत जैसे कि सिंपल रूप से यूज करते हैं। ब्राह्मण जीवन में भी हम कहते हैं बाबा बाबा, लेकिन वो हम उसको इतना महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जब वो जाएगा वापस तब हमें उसका एहसास होगा कि भगवान वो कौन था जो इस संसार में आया, जिस कार्य के लिए आया और हमारे लिए स्वयं इस संसार में आया हुआ था। तो पहली बात है कि बाबा के जाने के बाद हमें उसके महत्व के बारे में पता पड़ेगा, उसका एहसास होगा। दूसरी बात है बाबा जिस कार्य के लिए इस संसार में आए, जिस चीज के लिए उसको हमने संसार में बुलाया और वो आया, उसने वो सब कुछ दिया, अर्थात उसके पास जो खजाना है उसने वो सारा खजाना हमें दिया, उसका एहसास भी हमें तब होगा जब बाबा हमारे जीवन से या संगम युग से विदाई लेगा। जिस खजाने के लिए दुनिया में लोग तरस रहे, जिस खजाने के लिए दुनिया में लोग अनेक प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं, चाहे अल्पकाल की शांति हो या सुख हो या खुशी हो, बाबा वो सारा खजाना लेकर के हम सभी के जीवन में उपस्थित हुए और बाबा ने वो सारा खजाना हम सभी को बिल किया हुआ है, उसका मालिक बनाया हुआ है। तो बाबा ने वो सारा खजाना हमें दिया तो है लेकिन हम वर्तमान समय उसको इतना महत्व नहीं दे रहे कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया। भगवान ने शांति दी, शक्ति, सुख, खुशी, आनंद, वो सब दिया तो है लेकिन जो उसका महत्व तो होना चाहिए हम उसको उतना महत्व तो नहीं दे रहे। लेकिन जब वो जाएगा उसके बाद हमें एहसास होगा कि ये कितने बड़े बड़े खजाने थे, एक एक खजाने की कितनी वैल्यू है। दुनिया में लोग केवल शांति के लिए घर बार का त्याग कर देते हैं, जाके जंगलों में रहते हैं, लेकिन बाबा ने हमें वो अथाह दिया, सागर के रूप में दिया, हर खजाना हमारे लिए ऑफर किया कि आप इसके मालिक हो, आप स्वयं भी ऐसा हमारे समान बनो, मास्टर सागर बनो। तो हम पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन उसकी वैल्यू को समझ करके कि जो स्वयं भगवान ने हमें जो खजाने दिए हुए हैं और हमें इनसे भरपूर बनना है, वैसा बनना है, समान बनना है, उसका एहसास कब होगा? जब बाबा इस ब्राह्मण जीवन से या संगम युग से वापस होगा। तीसरी बात है कि बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे, यह पढ़ाई इस संसार में सबसे दी मोस्ट है, सबसे हाईएस्ट पढ़ाई है, लेकिन इस पढ़ाई का भी हम अभी उसका इतना महत्व नहीं दे रहे कि स्वयं भगवान आकर के जो पढ़ाई पढ़ा रहे उस पढ़ाई का कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा उसका फल है, प्राप्ति है। जिस पढ़ाई से हमें आधा कल्प के लिए एक श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होने वाली है, आधा कल्प के लिए जिस पढ़ाई के माध्यम से हम राजाई पद पाने वाले हैं, उस पढ़ाई का जितना अभी हमें महत्व देना चाहिए उतना महत्व हम दे नहीं रहे, लेकिन जब बाबा वापस जाएंगे तो उसका एहसास होगा कि भगवान ने जो पढ़ाई पढ़ाई, जो शिक्षा दी, जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान कितना श्रेष्ठ था, कितना महान था। चौथी बात है कि बाबा ने इस संगम युग पर इस जीवन में जो हमारी हेल्प की, क्योंकि हर एक के जीवन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परिस्थिति तो आती ही है, और बाबा उस समय हम सभी की हेल्प करता है। लेकिन हम क्या है, इस जीवन में मुसाफिर रह रहा ही है, तो बाबा ने हेल्प की उस समय, हमको उसका एहसास हुआ कि बाबा ने हमारे को मदद की, लेकिन थोड़े समय के बाद थोड़े हम आगे बढ़ते हैं तो उसको भूल जाते हैं, लेकिन बाबा के जाने के बाद वो सारे क्षण हमें याद आएंगे कि भगवान ने किस किस समय हमें कैसे कैसे मदद की, हमको हेल्प किया। तो बाबा कहते हैं उन बातों को संगम युग पर अभी इस पुरुषार्थी जीवन में आपको याद आना चाहिए कि भगवान हमें कैसे कैसे हेल्प करता है, उसने हमें क्या क्या मदद की समस्याओं से छूटने में, लेकिन हम वर्तमान समय उसको इतना महत्व नहीं दे रहे, लेकिन बाबा के जाने के बाद वो सारी बातें अपने आप बुद्धि में इमर्ज होंगी। पांचवी बात है, बाबा हम सभी को बार बार कहते हैं कि बच्चे सोचो, चिंतन करो कि तुम्हें क्या मिला, कौन मिला, तुम कौन हो। हम वर्तमान समय कहते हैं कि बाबा हमारा वो चिंतन नहीं चलता है, लेकिन बाबा के जाने के बाद वो सारी बातें बुद्धि में अपने आप चलेंगी कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया था, जो भगवान ने संसार में आया था उसने हमें क्या क्या दिया था, वो सारी बातें बुद्धि में अपने आप इमर्ज होंगी और वो चलने लगेंगी। लेकिन उसका लाभ लेने के लिए हमें उस बात को अभी उसको महत्व देना है कि भगवान हमें क्या क्या दे रहा है। ये भी एक अभ्यास है, तो इस प्रकार से जो बाबा ने अनेक प्रकार की जो बातें बताई हैं, जैसे कि हम यहाँ बैठ के पुरुषार्थ करते हैं, यहाँ ग्रुप में बैठते हैं, ये ग्रुप में बैठने का जो अभी का समय है वो भी बाबा के जाने के बाद याद आया करेगा कि हम कैसे कैसे बैठ के यहाँ पुरुषार्थ किया करते थे। भले अभी हम इसको इतना महत्व तो नहीं देते हैं, फिर बाद में जो इस पुरुषार्थ से जो हमारी अवस्था बन रही है, जो हमें हमारा जीवन श्रेष्ठ बन रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, वो हमें बाद में याद आएगा कि जो हमने किया उसका क्या रिजल्ट हमारे सामने है। हाँ जी, हाँ हाँ, तो बाबा ने जो हमें करने के लिए कहा है, पाने के लिए कहा है, तो जिन आत्माओं ने पुरुषार्थ करके अपने जीवन को ऐसा बनाया, अर्थात जो आत्मा ऐसे भाग्यवान बने, वो तो खुशहाल होंगे, उस समय अपने समान को याद करेंगे कि वाह रे मैं जो भगवान से सब कुछ पा करके ऐसे मालामाल बने, अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ धन्य धन्य बनाया। लेकिन जिन आत्माओं ने उस समय ध्यान नहीं दिया, अर्थात वर्तमान समय ध्यान नहीं दिया, तो उन आत्माओं को उस समय पश्चाताप भी होगा। तो इस प्रकार से बाबा के जाने के बाद जो बहुत सारी बातें हम सभी के जीवन में घटेंगी, उसका हम पहले से अटेंशन रख करके पुरुषार्थ करके अपने जीवन को जो बाबा चाहते हैं कि संपन्न और संपूर्ण बना लें, जो बाबा बार बार हम सभी को लक्ष्य देते हैं कि आपको बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है, यदि हम पुरुषार्थ करके अभी ऐसा बन जाएंगे तो बाबा के जाने के समय हमें उसका कोई मलाल नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा। भल हर एक के आंखों में आंसू होंगे लेकिन वो पश्चाताप के आंसू नहीं होंगे, खुशी के आंसू होंगे कि भगवान जिसको हमने संसार में जिसका आह्वान किया था और वो इस संसार में आया भी, इस संसार में जिस कार्य के लिए आया, जो उसने खजाने दिए हम उससे मालामाल बने, लेकिन जो आत्मा ऐसा नहीं करेंगे उनको उस समय पश्चाताप की अग्नि में जलना भी पड़ेगा। तो बाबा हम सभी को जो लक्ष्य दे रहे हैं उसके अनुसार अपने जीवन को ऐसा बनाना भी है। अच्छा, ओम शांति।